ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक रंजीत मेहता, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी नवाचार यात्रा में बड़े कदम उठाए हैं। न केवल विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार आधारित परिवर्तन देखने को मिला है, बल्कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती नवाचार अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में सामने आया है। हाल ही में जारी की गई सूची के अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 39वें स्थान पर है, जो 2015 में 81वें स्थान से एक उल्लेखनीय सुधार है। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर रंजीत मेहता। डॉक्टर मेहता, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद जी।
डॉक्टर मेहता, भारत की ये जो रैंकिंग है, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है पिछले 9 वर्षों में देखें अगर, तो कौन से फैक्टर्स आप समझते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण रहे इस रैंकिंग को बढ़ाने में?
जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, GII, जिसे हम कहते हैं, एनुअल रैंकिंग होती है, 133 कंट्रीज इसमें हिस्सा लेती हैं और भारत में इस बार जो है 39वां स्थान भारत का रहा। वो इसलिए रहा क्योंकि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, इसमें कई सारी चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहली बात तो होती है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हम विश्व स्तर पर किस तरीके से उसमें अपने आप को प्रतिस्पर्धा रखते हैं, अपने आप को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि भारत में एक इनोवेशन का कल्चर बना है। इनोवेशन का कल्चर ये बना है कि जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से भारत जो है, स्पेशली हमने देखा 2016-17 के बाद, भारत जो है दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक है। और इवन कोविड के टाइम में भी भारत की जो इकोनॉमी है सबसे अधिक रेट से यहाँ पे बढ़ रही थी। और जिस तरीके से जो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देखी है, उसमें कई ऐसे एरियाज हैं जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिस तरीके से भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कदम उठाए हैं, ये सबको देखते हुए हमारा जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में काफी बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने देखा कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बना है, अगर आप देखें 2016 में भारत जो है के पास 400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप होते थे, बट जो 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ, आज हमारे साथ जो है 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे इकोसिस्टम में हैं और 115 से ज्यादा करीब यूनिकॉर्न्स इस बीच में बन गए हैं। तो ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिला, क्योंकि अगर आप दुनिया में आज अगर कॉम्पिटिटिव रहना चाहते हैं, तो जब तक आपकी इकोनॉमी में इनोवेशन नहीं होगा, तब तक आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए जो है भारत ने सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। आप देखें हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, जिसको ह्यूमन कैपिटल कहाँ से आती है, एजुकेशन से। हमारे जो IITs हैं, IIMs हैं, विश्व स्तर के जो है ये इंस्टीट्यूट्स हैं, और जिस तरीके से जो स्टेम कहते हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसमें जो है जिस तरीके से फोकस हो रहा है, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत में हो रहा है, जैसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, अटल इनोवेशन मिशन है, इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट हैं, वो एक इकोसिस्टम बना रहे हैं इनोवेशन का देश में। तो हमें जो है उस केस में स्किल्ड वर्कफोर्स भी हमारे देश में काफी है, स्पेशली IT सेक्टर में, बायोटेक्नोलॉजी में, और अभी जो है AI एंड मशीन लर्निंग, इसमें भी हमारे जो है काफी स्किल्ड वर्कफोर्स आ रही है। और जो दूसरा जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमारे देश में हुआ है, वो है आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और जिसमें ICT हम कहेंगे, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप देख लीजिए भारत में जिस तरीके से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बढ़ा है। हमारा देश जो है आज जो है सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क हमारे देश में है, जो कि अमेरिका के बाद नंबर 2 है। और उसी तरीके से जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी भी हमारे देश में एक बहुत ज्यादा इस बीच में तेज रफ्तार इसमें बना है, जिसमें कई फिनटेक कंपनीज हैं, हेल्थ टेक कंपनी है, ई कॉमर्स है। तो इस दिशा में कई सारे स्टार्टअप्स ने हमारे यहाँ एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं, और स्टार्टअप हब जो है हमारा भारत जो है आप देखिए तीसरे नंबर का स्टार्टअप इकोसिस्टम है दुनिया में आज। जैसे महाराष्ट्र है, मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, ये जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम के हब्स बन चुके हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण इसमें कदम है कि किस तरीके से भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ऊपर आया, जो तीसरा स्तंभ है वो है मार्केट सोफिस्टिकेशन। अगर आप मार्केट सोफिस्टिकेशन की बात करें तो हमारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जिस तरीके से फिनटेक कंपनी आई हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट इंडिया में हैं, और जिस तरीके से जो गवर्नमेंट ने एक इकोसिस्टम तैयार किया, जैसे कि फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिस तरीके से जो एक सुधार आए हैं, जिससे एक देश में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बना है, और जो ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि आप इनोवेशन ड्रिवन एक बिजनेस इकोसिस्टम बना है, ये सारे तीन चार ऐसे कदम हैं जिससे जो है आज हम लोग 39वें स्थान पे हैं, जबकि हम पहले 80 से ऊपर हमारा इंडेक्स वहां पे था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए।
डॉक्टर मेहता, हम चाहेंगे श्रोताओं को आप एक बार ये भी बताएं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है क्या।
देखिए, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो जो है ये बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने पूरे देश में एक इनोवेशन का इकोसिस्टम पैदा किया है, एक इनोवेशन क्रिएट किया है, जिसमें कोई भी एंटरप्रेन्योर, और चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, सब लोग एक अपना योगदान जो है उसमें अच्छी तरह दे सकें। और इससे ये हाईलाइट करता है कि हमारे इन क्षेत्रों में, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, बाकी एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब में जब इम्प्रूवमेंट होता है तो ये कई इसमें जो फोकस एरियाज होते हैं, मैं आपको बताऊं जैसे जो पैरामीटर क्या है इसके। एक तो इसमें इंस्टीट्यूशंस का पैरामीटर है
जी।
दूसरा जो है पैरामीटर है ह्यूमन कैपिटल, कि आपके देश में किस तरीके से स्किल्ड वर्कर मिलते हैं, रिसर्च का इकोसिस्टम क्या है, और जो तीसरा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है देश में। चौथा मैंने आपको बताया जैसे मार्केट सोफिस्टिकेशन, जैसे इसमें फिनटेक है या वेंचर कैपिटलिस्ट किसमें वो आपके हैं कि नहीं है। पांचवा है आपके बिजनेस सोफिस्टिकेशन, कि बिजनेस करने में कैसे लोगों को आसानी है। और फिर छठा है आपके नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट क्या है, और फिर है लास्ट क्रिएटिव आउटपुट क्या है। ये सब जो है मिलाकर के जो है हमारा एक पूरा एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है बनाते हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड इसमें लगातार 13-14 सालों से टॉप कर रहा है, और इस बार भारत का जो है 39 जो है स्थान इसमें रहा है। और ये एक फैक्टर के बेसिस पे जो GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एसेस करता है किसी भी कंट्री को, इससे ये हमें पता चलता है कि देश में किस तरीके से इनोवेशन को लेकर के पूरी ग्रोथ हो रही है, हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है उसमें सुधार हो रहा है कि नहीं। और ये सब जो है आका जाता है, इसका मतलब ये है देश में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, और इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस बढ़ रहा है, और जो कई ऐसे इनोवेशन के क्षेत्र हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल्स है, आपने देखा जैसे कोविड के टाइम में हमारा देश एक वैक्सीन हब बन गया था, और जिसके हमने सिर्फ अपने लिए ही वैक्सीन नहीं बनाई बल्कि कई देशों को जो है देश यहाँ से जो है वैक्सीन जो है हमने सप्लाई की। और हमारा इसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है, बायरेक जिसे कहते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अगर आप बिजनेस सोफिस्टिकेशन की बात करें, जैसे IT है, बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल है, इसमें काफी सारे ऐसे इनोवेशन हो रहे हैं। अब एग्रीकल्चर में भी आप देखिए, अब हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और हमारा करीब 60% जो लोग हैं खेती से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से हम स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाएं और स्मार्ट फार्मिंग की जो टेक्निक है और उसमें AI और किस तरह से क्रॉप प्रिडिक्शन करते हैं, ये सब चीजें मेरे ख्याल से सप्लाई चेन का इम्प्रूवमेंट है
जी।
ये सारा चीजें जो है एक एग्रीकल्चर का भी इकोसिस्टम बना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी भारत ने एक लीड ली है, जो हमारा प्लान है, जिस तरीके इसे भारत ने मिशन बनाया कि बाय 2030 हम लोग 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अपने देश में यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारे जो है बहुत बड़े बड़े कदम हैं, जो कि इन सब जो है कदमों की वजह से इनोवेशन इंडेक्स है वो हम लोग काफी अच्छा करते जा रहे हैं उसमें। और आने वाले टाइम में जो मैं समझता हूँ हमारे जैसे PLI स्कीम है, जिसमें कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उसमें कई ऐसे ग्लोबल जायंट्स जो है अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है इंडिया में लगा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सेमीकंडक्टर्स में है और स्मार्ट डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग में है। ये सब जो है सारी चीजें जो डोमेस्टिक इनोवेशन कैपेसिटी है उसको बूस्ट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं।
डॉक्टर मेहता, भारत कम मध्यम आय वाले देशों में पहले स्थान पर है, ये पहचान भारत की वैश्विक नवाचार में भूमिका के लिए क्या महत्व रखती है, और विशेषकर अगर हम बात करें उभरते जो देश हैं, जो उभरती अर्थव्यवस्था हैं, उनके बीच में?
जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। भारत जो है सेंट्रल और साउथ एशिया में मिडिल इनकम जो देश है उसमें सबसे ऊपर आया है। ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हमारे देश में चैलेंज है। चैलेंज ये है, एक साइड हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी रहना है, दूसरे साइड हमें फार्मर्स को सपोर्ट करना है, तीसरे साइड हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना है, और हमारे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, लोगों को गरीबी से भी निकालना है। तो ये सारे मल्टी चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उनके बीच जिस तरीके से भारत ने परफॉर्म किया है, स्पेशली जो आपने कहा कि 10 देशों में हमारा नंबर वन स्थान है, जो देश है वो सेंट्रल और साउथ एशिया के बीच में है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक खबर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कदम हैं जैसे गति शक्ति मिशन है, और जिस तरीके से हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अपने आप को ठीक किया, जो गति शक्ति जो मिशन है उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है काफी हाई है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए जो एक इंटर मिनिस्ट्रियल जो गति शक्ति मिशन है, और जिस तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है, तो ये सब चीजें इस दिशा में बहुत एक अच्छा कदम है। और मैं समझता हूँ अगर जिस हिसाब से जो हमारे टेक्निक देश में जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, हाईटेक इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर, आपने देखा कि अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया था, तो ये सब चीजें जो है मोमेंटम देंगी इन सब चीजों को। जो AI है, ग्रीन एनर्जी है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब क्या है, इससे जो है देश में एक इनोवेशन का माहौल बनता जाएगा। और जिस तरीके से हमारे यहाँ आप देखा, स्पेशली आपने देखा एग्रीकल्चर में एग्री ड्रोन यूज हो रहे हैं, एग्री ड्रोन यूज हो रहे हैं बहुत सारी जगह, रिमोट सेंसिंग यूज हो रही है, ये क्या है, इनोवेटिव टेक्निक्स हैं। इससे जो है एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, और इसमें लोगों का फायदा होता है, देश जो है कॉम्पिटिटिव होता है, और पूरा इसमें जो फायदा है पूरे हमारे समाज को होता है और किसानों को होता है, हर इंसान जो कि देश में है उस सबको फायदा होता है। इनोवेशन आए तो एफिशिएंसी आती है देश में, एफिशिएंसी आती है क्योंकि जब तक हम इनोवेटिव एक कल्चर नहीं बनाएंगे तब तक हम देश को एक एडवांस इकोनॉमी नहीं बना सकते। तो इन सब में और हमारे सस्टेनेबल जो गोल हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs हैं, उनकी तरफ भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वो जो ओवरऑल एक होलिस्टिक एटमोसफियर जो बन रहा है इनोवेशन लेड, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी का, उससे जो है देश में एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेज हो रही है, और लोगों को इसका लास्ट माइल तक उसका फायदा भी मिल रहा है।
जी डॉक्टर रंजीत मेहता, आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।